मस्ती जंक्शन, मस्ती की फुल डोज नागपुर की आरजे वर्षा के साथ। कुछ अलग सी बातें, कुछ अलग से तराने, मस्ती से सुनिए, मस्ती में झूमिए वर्षा के साथ। मस्ती जंक्शन।
नमस्कार, जय जोहार। आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो और मैं हूँ आपकी आरजे वर्षा। आप सभी श्रोताओं को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज ही के दिन माँ भारती ब्रिटिश राज की कैद से मुक्त हुई थी। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई थी। आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितनी ही माताओं ने अपने पुत्रों को बलिदान कर दिया, कितनी ही महिलाओं की मांग सुनी हो गई थी, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया था। ये बात तब की है जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, पर आज हम स्वतंत्र हैं। पहले हम ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और आज हम हमारे देश के अंदर ही बहुत से मुद्दों पर आज़ादी की बात करते लड़ते दिख जाते हैं। तो आज हम अपने शो पर ऐसे ही लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के मायने क्या है उनकी नज़र में। आज हम समाज के हर मुद्दों पर बात करते हैं, हर क्षेत्र की समस्याओं पर भी बात करते हैं, पर समाज का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर हम बात करना भूल जाते हैं, उनके बारे में जिक्र करना ही नहीं चाहते। हमें याद ही नहीं रहता कि वो हमारे समाज का हिस्सा है। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तब एक ताली की गूंज हमारे कानों पर पड़ती है, हम घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि कोई उनसे बचने के लिए अपनी सीट से उठकर इधर उधर घूमने लगते हैं ताकि उन्हें जैसे तैसे नज़रअंदाज कर सके। या घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उनकी दुआएं लेने के लिए उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं, पर यदि यही बच्चा किसी की कोख से जन्म ले तो 9 महीने कोख में रखने वाली माँ भी उस बच्चे को धुतकार देती है। कभी सोचा है कि उस बच्चे का क्या दोष होता है कि वो तृतीय लिंग में पैदा हुआ है? क्यों उस बच्चे को हम और समाज घृणा की नज़र से देखता है? क्यों वो बच्चा हमारी तरह एक आम जिंदगी नहीं जी पाता? क्यों हम और ये समाज उसका मजाक उड़ाता है? आज़ादी के इतने सालों में उन्हें कितनी आज़ादी मिली है, कितना उनके प्रति हमारा और इस समाज का नज़रिया बदला है, चलिए जानते हैं उन्हीं से ही।
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं उड़ीसा किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष व सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। मीरा परिदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, तो आप कुछ बताएं।
जी नमस्ते। कल सुबह फिर हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से सारे दुनिया भर की जितने सारे भारतीय मेरे भाई बहन सबको प्रणाम मेरी तरफ से और शुभेच्छा, और आपको भी बहुत सारा धन्यवाद इतने अच्छे प्रोग्राम पे आपने मुझे चांस दिए हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से 48 किलोमीटर डिस्टेंस खोर्धा डिस्ट्रिक्ट की हूँ। जब बचपन पे मैंने जब मुझे अभी तक जितना याद है कि घर में माँ बाप की में उनकी नजर में पहला बेटा था। जब मेरी 7-8 साल हुआ, मुझे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था, जैसे कि लड़की लोग के साथ बैठना, उनके साथ खेलना, बहन की कपड़ा चुरा के पहनना, ऐसे ही। तो बचपन से जब टीवी गांव में छोटा सा कहीं पे सुरंग होता था या कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, वो क्षेत्र वगैरह, तो उसमें जो औरत लोग का अभिनय जो लड़के लोग कर रहे थे उसको आके मैं घर पे नकल कर रही थी, तब माँ बाप सब लोग तली मर रहे थे। लेकिन जब 10-12 साल हुआ मुझे क्या ऐसे चेंज देखे लोग ने, तो मुझे चका गांडू मामू ऐसे बहुत सारे लोग खराब लैंग्वेज पे मुझे चिढ़ा रहे थे। तो एक दिन मेरी जो ग्रांड मदर ने उनको आके बोला, हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर को लोकल वर्ड पे माइकिया बोलते हैं, तो दादी मुझे ये क्यों बोल रहे लोग। तो दादी ने तुरंत मुझे उनके सामने नंगा करके कपड़ा खोल के मेरी प्रूफ करा रहे थे। तो तभी से मेरी मन में ये क्वेश्चन है कि हर कोई यहाँ पे हर किसी का जीने का अधिकार, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा कमर ही लेके चल रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को एक नया आइडेंटिटी लूंगे। तब से मेरी लड़ाई शुरू होता अपने के साथ, समाज के साथ, खुद आईना के सामने खड़ी हुई। वही बचपन से मैं 10-12 साल से मैं लड़ रही थी। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं क्लास में हर टाइम फास्ट आती थी, फिर भी मुझे मेरी जितने सारे क्लासमेट और मेरे टीचर लोग बोल रहे थे कि तू एक छक्का है, तेरे साथ कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये मेरे लिए चैलेंज था। जब क्लास 8 में मैं पढ़ रही थी तब मैं गांव छोड़ के भुवनेश्वर आ गई। खुद जीने के लिए मैंने मजदूर की काम की, मैंने केला बेचा, मैंने गुपचुप बिक रही थी, दुकान में काम कर रही थी। जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन लेबर की काम की, पैसा का कमी था मेरे पास, तब मैं दैट टाइम लाइफ है सेक्सुअल अब्यूज ऑल्सो। तो ये बहुत ये हुआ था मेरे साथ। फिर मैंने कोई कुरियर संस्था पे काम की, छोटा बड़ा काम करके खुद एक ट्रैवल एजेंसी किया। फिर भी इतना अच्छा ट्राई कर रही थी कि सोशल मेंशन में मैं कैसे शामिल हूँ, और दुनिया की लोग ये ट्रांसजेंडर को लेके जो गंदी गंदी गाली दे रहे हैं ये मत करें, क्योंकि एक लड़का एक लड़की उनकी कपड़े की वजह से तो उनको लोग गाली नहीं देते। तो अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और थोड़ा सा मेरी ड्रेस चेंज है, कपड़ा चेंज है, और मेरी जिंदगी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और मेरी ओरिएंटेशन मेरी बेडरूम के अंदर ये बाहर किसी को मालूम नहीं है, फिर मेरे बारे में कितने क्यों इतना चर्चा होता है। मैं एक इंसान आम आदमी जैसे मैं भी खाना खाती हूँ, मैं भी अलग काम करना मेरे पास ताकत है, मैं काम करूंगी। फिर भी ये सब चीज होने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं गंदी तरह से सोचते हैं। तो वही चीज लेके मेरे लड़ाई हो रहा था, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज हुआ था। फिर मैंने मुंबई चली गई थी, 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया था। वहाँ पे किन्नर समुदाय के साथ मैंने जुड़ी हुई, मेरी किन्नर कल्चर को मैंने अडॉप्ट किया, और दैट टाइम मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो आचार्य महामंडलेश्वर उनके संस्पर्श में मैं आई, और वो मुझे बताए कि हमारी ट्रांसजेंडर लाइफ क्या है, किन्नर समुदाय के साथ कैसे बात करना, उनके लिए क्या काम करना। वहां से आके मैं यहाँ पे पखा करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। दैट टाइम ऑल्सो आई एम फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, किंतु मेरी कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, और मैं मेरी ड्रीम था कि मेरी कम्युनिटी के लिए और कोई नहीं सोच रहा है तो मैं खुद सोचूंगी और मैं खुद करूंगी। फिर बाद में सारे ओडिशा के ट्रांसजेंडर लोग को इकट्ठा करके अधिकार की लड़ाई हम लोग ने शुरू किया। सिर्फ अधिकार का बात नहीं, हमने वो टाइम दुनिया को दिखाया कि सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप, प्लांटेशन, स्वच्छ भारत, गरीब बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम जिसके लिए सारे ओडिशा में एक बहुत बड़ा चेंज आया। लोग सोचे कि अरे नहीं, ये अपने अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शो कर रहे हैं। आज मैं खुद गर्वित गर्व महसूस कर रही हूँ मेरी कम्युनिटी के लिए कि ओडिशा में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे कोई ना कोई संगठन और बच्चे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके लिए मुझे स्टेट बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड भी मिला। मुझे 2016 में HIV के लिए HIV मास्टर ट्रेनर हूँ मैं, तो उसलिए HIV अलायंस से और नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी से बेस्ट ट्रांसजेंडर लीडर अवार्ड मिला। मुझे इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम पे अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के टाइम पे मुझे व्हाइट हाउस विजिट करने के लिए मिला। 1 महीना के लिए मैं USA में रह के आई। देन नेशनल अवार्ड से लेके ऐसे 500 से ज्यादा अवार्ड मिला। आज बहुत कुछ चेंज हुआ है, मुझे मेरी यहाँ पे बच्चे लोग, एक उड़ीसा सेल टैक्स ऑफिसर है और एक बहुत बच्चे मेरे कैब चला रहे हैं, जर्नलिस्ट है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की ये पे काम कर रहे हैं बच्चे लोग। हमारी एसएजी फॉर्मेशन हम लोग ने किए हैं, हम खादी बोर्ड से लोन लेके बच्चे लोग के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप पे डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग को काम दिया है, एंड ऑल्सो आई एम एसोसिएटेड विथ एसडीजी कंपनी लिविंग नो वन बिहाइंड में वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। एंड फाइनली अब यहाँ पे कविता भी लिख रही हूँ, मेरी दो पुस्तक अभी आने वाला है। सब कविता मेरी ओडिया का है, ओडिया मैगजीन पे निकलता है। और अभी बीजू जनता दल, जो कि आप सबको पता है हमारी मुख्यमंत्री, जो कि इतना अच्छा काम करके सारे दुनिया में चर्चित है, माननीय नवीन पटनायक जी, मुझे उनके पार्टी में आज वाइस प्रेसिडेंट स्टेट वुमेन सुइंग का दायित्व दिए हैं और स्टेट काउंसिल मेंबर की तौर से भी दायित्व दिए हैं। एंड लास्ट डे यस्टरडे डिक्लेयर किए हैं एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज आज प्रभारी के रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिए हैं। यहाँ पे आज जो नॉर्मल मैं ये सोचती हूँ कि अगर खुद का कॉन्फिडेंस है, खुद का ऊपर विश्वास है और आपकी काम, आपकी वजूद, आपकी अस्तित्व, आपकी प्रेजेंट और किसी का जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, तो आपका ड्रीम सक्सेस करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होगा। हाँ, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं आपके सामने आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जी बिल्कुल, यदि किसी चीज को यदि हमको करना है और आप पूरी ईमानदारी के साथ उसमें यदि मेहनत करते हैं तो सफलता तो जरूर ही मिलती है। और नियत यदि आपकी नेक है तो देखिए, कोई भी सफलता के पीछे में ना संघर्ष बहुत जरूरी होता है। इंसान को यदि आसानी से कोई चीजें मिल जाती ना तो उसका महत्व नहीं होता। आपने इतना स्ट्रगल किया तो आप आज जिस पोजीशन पे हैं, तो आपको गर्व होता होगा आपको, क्योंकि आपने बिल्कुल मेहनत करके आप इस पोजीशन पे आज आई हैं, तो आपको मेहनत क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है वो पता है। और आपको कहीं से विरासत में मिल जाता तो आपको उतना इन चीजों की इम्पोर्टेंस नहीं होती,
अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ करूंगी, मैं आपको डिस्टर्ब इंटरप्ट किया। मुझे याद है जब मैं मुंबई से मुंबई गई नहीं थी और मेरी जर्नी शुरू हुआ था, एक्चुअली महाराष्ट्र मुंबई से मेरी जर्नी हुआ था, तो मैं मेरी सेकेंड नेटिव प्लेस मुंबई आज भी मैं मानती हूँ। आज भी याद है जब मैं ओडिशा में थी, आपको पता होगा हर दुनिया में, नॉट ओनली मेरी स्टेट, 20-30 साल के पहले ट्रांसजेंडर लोग का सिचुएशन कितना खराब था, कितना डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए था। मैं एक जगह पे गई थी, उनकी जो चौतरा होता है टेरेस, वो टेरेस के पास में दरवाजा के पास में बैठी थी, तो उठ के आई, दो चार स्टेप में देखे पीछे देख रही हूँ तो उनकी घर की जो मालिकन है वो आके वो जगह पे पानी ये देख के साफ कर रहा था, क्योंकि एक किन्नर बैठा था उनके द्वार पे। आज इतना चेंज हुआ है, आज तो लोग पूजा करते हैं, लोग तो आज घर के सामने लाइन लगाते हैं गृहस्थ के लिए। आज ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे मेरी कुछ ट्रांसजेंडर बच्चे जो ट्रैफिक पोस्ट पे मांग रहे थे, रानी किन्नर करके एक मेरी बच्चा जो कि अभी उबेर कैब का 5-स्टार रेंटिंग ड्राइवर पोस्टिंग ड्राइविंग कर रहा है, 5-स्टार रेंटिंग मिला है, जो कि इंडिया में पहला ड्राइवर है।
अरे वाह।
अब तो ये अगर आप कठिन से कठिन परिश्रम करोगे तो दुनिया में ऐसा कोई चीज ही नहीं आपकी लक्ष्य को भ्रष्ट करेगा, डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में आजादी का मतलब, आजादी के मायने क्या है, आप क्या सोचते हैं आजादी के लिए?
मैं और एक बार सारे दुनिया भर की मेरी भारतीय लोग, मेरे देशवासी को मैं शुभेच्छा देना चाहूंगी। ये 74 इंडिपेंडेंस डे है ना, पूरा मेरी देश की हर नागरिक को, जाति वर्ण लिंग निर्विशेष में हर किसी को मेरी प्रणाम और अभिनंदन शुभेच्छा। आज एक सिटीजन ऑफ इंडिया मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हम लोग स्वाधीन हुए थे और इस दिन को इतना अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बट दिस ईयर ड्यू टू फॉर कोविड-19 वी आर फेसिंग मेनी अ प्रॉब्लम, सो दैट जितना अच्छे से हम लोग ने सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पावन भी हम बहुत सारे लोग इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग सबको ये मानना पड़ेगा पहले कि हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं मास्क पहना है हमको, हम डिस्टेंस मेंटेन करें, और अगर घर पे आते हैं तो अच्छे से हाथ को साफ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मैं भी खुद बहुत गर्व महसूस करती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे बोलना है कि मेरी देश सारे दुनिया में अनोखा है, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी, फिर भी हम लोग सब एक साथ में इतने सारे लैंग्वेज को लेके बैरियर, लेकिन हमारे बीच में कोई बैरियर नहीं है। इतना कास्ट को लेके इतना सारे कास्ट को लेके लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बीच में कोई बैरियर नहीं। इतना सारे रिलीजियस, फिर भी हम लोग सब भारतीय है, हम इकट्ठा हैं। देश स्वाधीन होने के 70 साल के बाद ये कोई नहीं सोचा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उनको भी देश के अंदर आजादी चाहिए। चलो बहुत देर हुआ, लेकिन 2014 में अप्रैल 15 तारीख को हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हमको आज ए ट्रांसजेंडर। तब से हम लोग आजादी खुला सांस लेके जी रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोलूंगी, जैसे एक पुरुष, जैसे एक महिला के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो मेरे लिए मेरी आजादी ऐसा है कि मैं क्या हूँ ये मेरे ऊपर मैं जानती हूँ। मैं अगर फिर एक बार बोलूंगी कि मैं आपके सामने खड़ी हो रही हूँ तो आपका जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो प्लीज कृपया मेरी ड्रेस को लेके, मेरे कपड़ा को लेके, मेरी वे एक्सप्रेशन को लेके, मेरी वक्तव्य को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा ना हो। इस देश में हम लोग इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान हमारा है, हमारी फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो मुझे एक आम आदमी के हिसाब से, एक नागरिक के हिसाब से, हर कोई जगह पे पार्टिसिपेशन करने के लिए मुझे मौका मिले, मुझे मेरी आइडेंटिटी को लेके, मेरी बिहेवियर को लेके कहीं पे मुझे रोक ना लगा जाए, मेरे लिए ये मेरे लिए आजादी।
बिल्कुल, जैसे मैम आप जो है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, समुदायों के लिए बहुत सा काम कर रही हैं, तो ऐसी कोई आज़ादी, आप इतना काम कर रही हैं, तो आप सरकार से या इस समाज से आप कहना चाहेंगी कि आज़ादी, किस तरह की आज़ादी की आप मांग करती हैं सरकार से या फिर?
हमें सरकारी से, समाज से, दुनिया से, हर किसी से मांगूंगी ये आज़ादी कि मैं एक इंसान हूँ, जैसे एक मेल, जैसे एक फीमेल, ये क्रोमोजोम के हिसाब से हो, नेचर की क्रिएशन है या माँ बाप की संगम से, जिस हिसाब से वो लोग में पैदा होते हैं, तो एग्जैक्टली मैं भी उस हिसाब से पैदा हूँ, ना कि कोई हॉस्पिटल की कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट या कोई लैबोरेटरी का कोई केमिकल का गिरने के बाद मैं पैदा हुई। तो अगर एक लड़का लड़की जैसे पैदा होते हैं, अगर मैं ऐसी ही पैदा हुई हूँ, तो कृपया करके मुझे क्यों आप गाली देंगे रास्ता पे अगर मैं चलती हूँ? मैं अगर काम करने के लिए जाऊंगी तो मुझे क्यों लोग मेरे ऊपर क्यों हंसेंगे? मैं अगर घर पे रह रही हूँ, माँ बाप ने मुझे घर से क्यों निकालेंगे? और प्रॉपर्टी का राइट्स मेरे पास क्यों नहीं होगा? एक लड़का और लड़की के लिए, एक भाई और बहन अगर मेरे पास है तो उनको जैसा ट्रीट कर रहे हैं माँ बाप, मुझे भी ऐसा ट्रीट करना चाहिए। और ग्रास रूट से टॉप लेवल, टॉप लेवल पर मेरे लिए हर जगह पे स्थान होना चाहिए। इफ आई एम, अगर मुझे स्वीकृति मिला है कि मैं थर्ड जेंडर हूँ, इस देश का तृतीय पंथी, तृतीय लिंगी व्यक्ति विशेष हूँ, समूह हूँ, तो हर जगह पे मेरी प्रेजेंटेशन चाहिए, और मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, मुझे मेरी अस्तित्व के लिए कोई स्टिग्मा ना करे, ये मेरी आजादी। मैं अपने रास्ते से आराम से पूरा फ्री घूम सकती हूँ, लोग मुझे ये बोल नहीं सकते कि तू छक्का है। और ये किन्नर की जो शब्द है, ये जो हिजड़ा की जो शब्द है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया है, स्वीकृति दिया है। लोग ने आज सोशल मीडिया हो या गणमाध्यम के ऊपर हर टाइम खराब के हिसाब से, ये हिजड़ा कुछ कर नहीं पाएगा, किन्नर कुछ कर नहीं पाएगा, ये 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 वार को खराब बुरी नजर से ना देखे, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस करे, ये मेरी आजादी, मेरी नजर से ये आजादी है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ, दुनिया में देश के नागरिक की तौर से हर किसी को इक्वल पार्टिसिपेशन, उसका स्पीच, उसका एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, एवरीथिंग, सबको समान की तरफ से देखना चाहिए, ये मेरी नजर से आ जाए।
श्रोताओं, ये थी हमारे साथ मीरा परिदा जी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सबको यदि समानता का अधिकार है, इनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, समाज जो है इनको भी बराबरी की नज़र से देखा जाए, इन्हें भी वही सम्मान, वही शिक्षा का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो एक आम जनता जैसे परिवार के साथ जीते हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी जीते हैं, तो बिल्कुल इनका भी हक है, ये भी समाज का हिस्सा है, इन्हें अलग ना समझें, बराबर ही समझें और इनसे डरे ना, और इन्हें प्यार और सम्मान दिया जाए।
आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, बात कर रहे हैं आजादी के मायने आज के परिवेश में। हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो हम उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। पुलिस वालों से आग्रह भी करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी शिकायतें दूर कर दे, पर अक्सर पुलिस वालों के मुंह से हमें ये सुनने को मिल जाता है कि जो भी कदम उठाते हैं कानून के दायरे में रहकर ही उठाएंगे। कभी कभी पुलिस वालों के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कानून के चलते उनके हाथ बन जाते हैं और वो जो सही भी करना चाहे ना पर वो नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां होती है जहां वो बंध जाते हैं। यदि उन्हें आज़ादी दे दी जाए तो वो कौन से काम होंगे जो वो करना चाहेंगे और किस तरह की आज़ादी की वो उम्मीद रखते हैं।
हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश चंद्रवंशी जी, जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में हैं और कोरबा में कार्यरत हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम मस्ती जंक्शन में।
धन्यवाद वर्षा जी। मैं राजेश चंद्रवंशी, वर्तमान में जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर थाना बाकी मुरम पदस्थ हूँ।
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी के क्या मायने हैं आपकी नज़र पे।
सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की तमाम पर्व की बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आपने पूछा कि आज़ादी का आपके क्या मायने हैं
जी,
आज़ादी सबके लिए, मानव के लिए नहीं अपितु सभी जीव जंतुओं के लिए भी आज़ादी आवश्यक है। आज सभी की जगह एक वाइल्ड एक्ट से लेकर सभी जैसा प्रावधान बने गए हैं जहाँ जंतुओं के बारे में भी आज़ादी के बारे में है, तो हम तो एक मानव जीवन है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही अहम चीज है। आज़ादी से प्राय ऐसे वातावरण से है जहाँ पे आदमी अपने हिसाब से अपने जीवन जी सके, उसको बोलने की आज़ादी हो, रहने की आज़ादी हो, अपने काम करने की आज़ादी हो, पूजा की आज़ादी हो, उपासना की आज़ादी हो, पढ़ने लिखने की आज़ादी हो, ये सब आज़ादी में है। ऐसा वातावरण जिसमें एक व्यक्ति को ये सब चीज़ें सुविधाएं मिले वो आज़ादी है
जी।
वैसे ही जैसे हमारे देश में या कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी के बारे में, हमारे अधिकार के बारे में जो फ्रीडम दी गई है, आज़ादी दो तरह की होती है जो आकाश के मायने में, जैसे हम लोग लगे रहते हैं, लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले हमको रोक देते हैं, टोक देते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा हमारे यहाँ जो है फ्रीडम है, लिबर्टी नहीं है किसी चीज के लिए। फ्रीडम से मतलब है कि आपकी आज़ादी की या आपकी स्वतंत्रता की लिमिटेशंस हैं, जहां आप किसी दूसरे की लिमिटेशंस को, उसकी आज़ादी को आप कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाधा पहुंचाते, तो आपकी आज़ादी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, और जहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो वो लिबर्टी हो जाती है। तो लिबर्टी हर दृष्टिकोण से नुकसानदायक होती है।
सर, जैसे कि जो आम जनता है उनका आरोप होता है कि पुलिस वाले जो हैं हम पे अन्याय कर रहे हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पुलिस एक एजेंसी है, हमारा काम है इस समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हमारा काम है लोगों की अधिकारों की रक्षा करना, उसकी आज़ादी की रक्षा करना, जैसे ऊपर हमारे कोर्ट हैं, तो मैंने आपसे बताया कि एक आदमी फ्रीडम है लेकिन लिबर्टी नहीं है, कि रिस्ट्रिक्शन जगह बने कि आप ये नहीं करो आप वो नहीं करो। जहाँ आदमी जैसे कि हमारे एक रिस्ट्रिक्शन को जोन बनाया कि नो मेंस जोन है, आप इस जोन में नहीं जाना है, या ट्रैफिक सिग्नल्स में है कि रेड सिग्नल है तो आपको रुक जाना है, लेकिन आदमी उस नियम का जो पालन रेड सिग्नल कहीं है और रेड सिग्नल जंप करता है क्योंकि उसको रुकना है वहां पे नियम में, लेकिन वो रुकता नहीं को जंप करता है, तो हमारी वहां से एक्टिविटी या हमारी एक्शन चाले जाती है। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जहां पे लोग जहां किसी आजादी की अपनी फ्रीडम की मिसयूज करते हैं, वहां से फिर हम जो पुलिस है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते कि आप ये मत करें। तो आज लोग चाहते हैं कि हमको रोक टोक करें, क्योंकि हमारा काम ही रोक टोक ऐसा है, जो कोई आदमी जो वायलेशन करे रूल का, लॉ का, फ्रीडम का, तो पुलिस से काम होता है कि ऐसी चीजों को संबंधित फॉर्म में, संबंधित एक्ट में उसको प्रोसिक्यूट करना और आगे बढ़ाना। इसलिए लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि पुलिस वाले हमारी स्वतंत्रता का खनन कर रहे हैं, हमको रोक टोक कर रहे हैं। ये लोगों का कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन हम भी एक बाउंडेड बाय लॉ हैं, जो हमको कानून या जैसे हमारे जो संविधान हमको शक्तियाँ प्रदान की हैं, और संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं अपने काम में।
ये थे राजेश चंद्रवंशी जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और शायद लोगों का नजरिया बदल जाए। जो लोग पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि हमें पुलिस रोकती है, तो पुलिस वाले भी जो है वो भी कानून के दायरे में हमारी रक्षा ही कर रहे हैं। वो हम यदि टोकते हैं तो वो हमारे लिए ही, हमारी सुरक्षा के लिए ही टोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जो हमारे हमसे बात किए और इतनी अच्छी बातें आपने कही।
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
जश्न आजादी हम मना रहे हैं और महिलाओं से ना पूछा जाए कि उनकी नज़रों में आज़ादी के क्या मायने हैं तो शायद हमारी बात पूरी ना हो। तो चलिए जानते हैं महिलाओं से उनकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं।
हमारे साथ में विद्या श्रीवास जी जुड़ गई हैं, चलिए जानते हैं उनकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या जी हमारे प्रोग्राम मस्ती जंक्शन में, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
जी, मेरा नाम विजय श्रीवास है, मैं प्रोफेशन से ब्यूटिशियन हूँ। आज़ादी के मायने में आज भी बहुत सारी लेडीज लोग पीछे ही है, भले ही वो अपना कितना भी अर्न कर लें और तो वो अपने मन से उसको स्पेंड नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें परिवार को देख के चलना पड़ता है। और दूसरी ये है कि जॉइंट फैमिली रहे या तो फिर सिंगल फैमिली भी रहे तो भी उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो क्या पहने, क्या ओढ़े, प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन वो उसके हिसाब से रहना भी चाहे तो नहीं रह सकती। फॉर एग्जांपल जैसे सर पे पल्लो रखो भाई, कि अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम हमको बताकर जाओ। जो आजकल के 21वीं सदी में जैसे रहना चाहिए लेडीज लोग को, तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन अभी भी है, चाहे वो अर्न करे या चाहे वो वेल एजुकेटेड रहे, कैसा भी रहे, पर वो है कि उसको हमेशा एक बंधन के दायरे में रहना ही रहना पड़ता है।
पर ये तो, जो आप जो कह रही, ये तो हमारे भारत में महिलाएं यदि सर पे पल्लू लेती हैं सारी चीजें दी तो वो संस्कार के अंदर आते हैं। तो आप मतलब आजादी ये चाह रही है कि यदि आप सर में यदि पल्लू रखें तभी एक भारतीय नारी अपने आप को प्रूफ कर पाएंगी कि नहीं हम संस्कारी हैं, है ना, आप यही कहना चाह रही है।
संस्कार तो सर पे पल्लू रखने से थोड़ी ही प्रूफ होता है, वो तो नजरों में रहता है, वो तो नियत में रहता है।
बिल्कुल, आप किस टाइप की आजादी, मतलब ये कि जो बंधन है थोड़ी सी छूट मिले लेडीजों को, जिस तरह से लड़कों को छूट मिलती है, बिल्कुल आप वैसे ही कुछ छूट की बात कह रही हैं, है ना?
हाँ, जो हम अपनी फैमिली को इतना डिवोट करते हैं, पूरी लाइफ दे देते हैं, उसमें कितने सेक्रीफाइस रहते हैं, तो कम से कम कुछ तो वैल्यू हो, कुछ तो हम अपने मन का करें उसमें।
ये थी विजया जी जो हमारे साथ जुड़ी थी। विजया जी, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ हमसे बात की।
है मेरा हो जैसा देश है तेरा,
ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा,
ऐसा देश है मेरा हाँ
जैसा देश है मेरा।
आज हमने किन्नर समाज की आजादी की बात की, पुलिस विभाग की भी बात की, महिलाओं से बात की और जाना कि आज़ादी के मायने क्या हैं इनकी नज़र में। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब सारी शुभकामनाएं। आप सुनते रहिए हरपा रेडियो। जय हिंद, जय भारत।
मस्ती जंक्शन, मस्ती की फुल डोज नागपुर की आरजे वर्षा के साथ। कुछ अलग सी बातें, कुछ अलग से तराने, मस्ती से सुनिए, मस्ती में झूमिए वर्षा के साथ।
मस्ती जंक्शन।